एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, मैं हूं आपका पहला मेजबान।
और मैं हूं आपकी दूसरी मेजबान। आज हम बात करने वाले हैं इतालवी साहित्य के बारे में। एक लंबा शानदार इतिहास है इसका।
हाँ, और इस सफर में हम पीटर हेंसवर्थ की नजर से देखेंगे। वो एक जाने माने विद्वान हैं और उनकी किताब है इटालियन लिटरेचर, अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन। हम उसी के इर्द गिर्द बात करेंगे।
बिल्कुल, और ये सिर्फ पुरानी किताबों की बात नहीं है, है ना? मतलब आज भी ये क्यों जरूरी है समझना।
सही कहा। देखिए, इसे समझने से आज का इटली समझ आता है, और भाषा, पहचान, कला, राजनीति, ये सब कैसे जुड़े हैं, इसकी एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर मिलती है।
हाँ, मतलब ये वो चीजें हैं जिन्होंने सिर्फ इटली नहीं बल्कि पूरे यूरोप की सोच पर असर डाला।
तो चलिए शुरू करते हैं। पीटर हेंसवर्थ, पहले थोड़ा इनके बारे में जान लें। हाँ, पीटर हेंसवर्थ जो हैं, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इटालियन के एमेरिटस प्रोफेसर है। बरसों का तजुर्बा है उनका,
और खासतौर पर दांते, पेत्रार्क, पुनर्जागरण, इस पर उनकी पकड़ जबरदस्त मानी जाती है।
लेकिन उनकी एक खास बात क्या है पता है? वो सदियों के साहित्य को ना एक धागे में पिरो के देख पाते हैं, और मुश्किल से मुश्किल चीज को भी बड़े आसान तरीके से समझा देते हैं।
हाँ, उनकी वो वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन वाली किताबें इसी का सबूत हैं। वो सिर्फ ये नहीं बताते कि क्या हुआ बल्कि क्यों और कैसे हुआ, इस पर ज्यादा जोर देते हैं।
और शायद एक ब्रिटिश विद्वान होने के नाते वो बाहर से कुछ ऐसे पैटर्न देख पाते हैं जो अंदर वालों को, मतलब इटली के विद्वानों को, उतने साफ न दिखें। एक अलग नजरिया मिलता है।
सही, तो हेंसवर्थ इतालवी साहित्य के बारे में क्या बड़ी बातें कहते हैं? उनका मुख्य आइडिया क्या है?
देखिए, वो कहते हैं कि इतालवी साहित्य सिर्फ लेखकों और किताबों की एक लिस्ट नहीं है, ये दरअसल एक कहानी है, एक संस्कृति की कहानी।
अच्छा, किस तरह की कहानी?
एक ऐसी संस्कृति की कहानी जो लगातार अपने बहुत शानदार अतीत, जैसे रोमन साम्राज्य या मध्य युग, और अपने बिखरे हुए राजनीतिक वर्तमान के बीच एक तरह का संवाद करती रही है, जूझती रही है।
और यहीं पर वो एक बड़ी दिलचस्प, थोड़ी उल्टी सी लगने वाली बात कहते हैं ना?
हाँ बिल्कुल, वो कहते हैं कि इटली जो सदियों तक राजनीतिक रूप से कमजोर रहा, बंटा हुआ रहा, शायद यही चीज उसकी साहित्यिक ताकत बन गई।
सुनने में अजीब लगता है, मतलब कमजोरी से ताकत, कैसे?
उनका तर्क ये है कि क्योंकि कोई एक मजबूत राजा या केंद्रीय सत्ता नहीं थी लंबे समय तक, तो अलग अलग इलाकों में, अलग अलग दरबारों में भाषा को लेकर, कला को लेकर नए नए प्रयोग करने की ज्यादा आजादी थी, विविधता खूब पनपी।
ये तो सोचने वाली बात है। और एक और बड़ा आइडिया उनका ये है कि साहित्य ने राजनीति से पहले इटली को बनाया।
हाँ, मतलब जब इटली नाम का कोई एक देश नक्शे पर था ही नहीं, तब दांते जैसे कवि अपनी भाषा में, अपनी कविताओं में एक साझा इतालवी पहचान की बात कर रहे थे। साहित्य ने एक तरह से राष्ट्र का खाका तैयार किया।
तो ये पूरी कहानी है पहचान को गढ़ने की, अपनी जड़ों को, मतलब क्लासिकल विरासत को, अपनी जमीन की नई चीजों से जोड़ने की।
बिल्कुल, और हेंसवर्थ हमें इसी सफर पर ले चलते हैं, 13वीं सदी से शुरू करके आज तक।
तो चलें इस सफर पर, कुछ खास पड़ावों को देखते हैं। शुरुआत कहाँ से होती है? 13वीं सदी।
हाँ, 13वीं सदी। उस वक्त क्या था कि लैटिन भाषा का दबदबा था और इटली छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, तो आम लोगों की भाषा, जिसे वर्नैक्युलर कहते हैं, उसमें साहित्य थोड़ा देर से आया।
लेकिन आया।
हाँ, आया जरूर, और दो धाराओं में आया। एक तो थी धार्मिक धारा, जैसे संत फ्रांसिस ने कैंटिकल ऑफ द सन लिखा, वो भी अपनी उमरियन बोली में।
अच्छा।
और दूसरी थी दरबारी धारा। सिसिली में सम्राट फ्रेडरिक द्वितीय का दरबार था, वहां कवि थे, वो दरबारी प्रेम वगैरह पर लिखते थे। मजे की बात ये है कि बाद में इनकी कविताओं को टस्किनी के कवियों ने लिया और अपनी भाषा यानी टस्कन में ढाला।
और यहीं से टस्कन भाषा का साहित्यिक सफर शुरू हुआ।
हाँ, एक तरह से नींव पड़ी, और फिर टस्कनी में ही वो डोल्से स्टिलनोवो यानी मीठी नई शैली आई। ग्विनिजेली, कैवलकांती जैसे कवि, इन्होंने प्यार को एक फलसफियाना, लगभग आध्यात्मिक रंग दे दिया।
ये सिर्फ कविता नहीं थी, ये आम भाषा का दावा था, है ना?
बिल्कुल, ये वर्नैक्युलर क्रांति थी एक तरह की, अपनी भाषा में अपनी बात कहना, सांस्कृतिक पहचान बनाना।
और इसी जमीन से निकले वो तीन महारथी, दांते, पेत्रार्क, बोकाचो, थ्री क्राउन्स, 14वीं सदी। इनके बिना तो बात ही अधूरी है।
सबसे पहले दांतें, जाहिर है डिवाइन कॉमेडी, महाकाव्य, लेकिन सबसे बड़ा काम जो उन्होंने किया वो था अपनी फ्लोरेंटाइन बोली में लिखना और उसे इटली की साहित्यिक भाषा बना देना हमेशा के लिए।
उन्होंने भाषा को गढ़ा एक तरह से।
हाँ, फिर आए पितराक, उन्हें पहला आधुनिक मानव भी कहा जाता है। उन्होंने पुरानी क्लासिकल किताबों को फिर से खोजा, जिसे हम मानवतावाद या ह्यूमनिज्म कहते हैं।
और उनकी वो प्रेम कविताएं, कैंजोनियरे, सोनेट को उन्होंने ही मशहूर किया यूरोप में। उनमें जो आत्ममंथन है वो कमाल का है।
बिल्कुल। और तीसरे हैं जोवानी बोकाच्चो, उनकी डेकामेरॉन, 100 कहानियां। प्लेग से बचने के लिए कुछ लोग शहर से बाहर जाते हैं और कहानियां सुनाते हैं।
आज भी कितनी जिंदा लगती हैं वो कहानियां। उन्होंने इतालवी गद्य कथा की नींव रखी।
सही कहा। तो इन तीनों ने मिलकर भाषा, कविता, कहानी, इन सब का एक ऐसा स्टैंडर्ड बना दिया कि आने वाले सदियों के लेखक उसी से जूझते रहे। वो प्रेरणा भी थी और एक बोझ भी।
इसके बाद आया पुनर्जागरण का दौर, 15वीं-16वीं सदी। मानवतावाद का विचार और फैला, मतलब प्राचीन ग्रीस और रोम से सीखो और आज की जिंदगी को बेहतर बनाओ।
हाँ, और फ्लोरेंस, डनारा, उर्बिनो जैसे शहर कला और संस्कृति के बड़े केंद्र बन गए। मेडिची परिवार का नाम सुना होगा फ्लोरेंस में।
यहाँ कौन से बड़े नाम याद रखने चाहिए? मैकियावेली।
हाँ, निकोलो मैकियावेली। उनकी किताब द प्रिंस तो बहुत ही चर्चित है। राजनीति कैसे काम करती है, सत्ता कैसे हासिल की जाती है, इसका बिल्कुल यथार्थवादी, बिना लाग लपेट का विश्लेषण।
और दूसरा नाम?
एरियोस्टो, लुडोविको एरियोस्टो, उनका महाकाव्य ऑरलैंडो फ्यूरियोसो। अरे, उसमें कल्पना, व्यंग्य, शूरवीरता, जादू, सब कुछ है। पुनर्जागरण की कला का शिखर मानते हैं उसे।
इसी दौर में वो आदर्श दरबारी वाली किताब भी आई थी ना, कैस्टिलियन की।
हाँ, द बुक ऑफ द कॉर्टियर, बेल्डसारी कैस्टिलियन, कि एक आदर्श दरबारी या सज्जन कैसा होना चाहिए, कला प्रेमी, योद्धा, विद्वान, सब कुछ।
अच्छा, फिर 17वीं-18वीं सदी में क्या हुआ? आपने कहा था सुदृढ़ीकरण और बाधाओं।
हाँ, 17वीं सदी में वो बरोक शैली आई, बहुत सजावटी, नाटकीय, लेकिन दूसरी तरफ चर्च का नियंत्रण भी बढ़ गया था। गैलीलियो वाला मुकदमा याद है ना, वो इसी दौर का है।
हाँ।
फिर 18वीं सदी में इसके खिलाफ एक प्रतिक्रिया हुई, लोग सादगी, तर्क की तरफ लौटे, ज्ञानोदय का असर था ये। यहाँ दो नाम अहम हैं, कार्लो गोल्डोनी, जिन्होंने कॉमेडी नाटकों में यथार्थवाद लाया,
और दूसरे?
विटोरियो अल्फियरी, उन्होंने त्रासद नाटक लिखे, तानाशाही, आज़ादी, ये सब विषय थे। एक तरह से आने वाले राष्ट्रवादी दौर की आहट थी उनमें।
और फिर आई क्या वो दौर, 19वीं सदी, राष्ट्रवाद, रोमांटिकवाद और इटली का एकीकरण। यहाँ दो बड़े नाम हैं जो बिल्कुल अलग अलग ध्रुवों पर लगते हैं।
हाँ, एक तरफ अलेसैंड्रो मानजोनी, उनका उपन्यास है आए प्रोमेसी स्पोसी, यानी द बिट्रॉथ। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये कोशिश है पूरे इटली को एक सांस्कृतिक धागे में पिरोने की।
अच्छा, वो कैसे?
उन्होंने जानबूझकर फ्लोरेंस की बोली इस्तेमाल की ताकि वो पूरे देश की स्टैंडर्ड भाषा बन सके, और कहानी आम लोगों के संघर्ष, उनके विश्वास, नाइंसाफी के खिलाफ उनकी हिम्मत की है। रिसोजिमेंटो यानी एकीकरण आंदोलन के आदर्शों से जुड़ी हुई।
और दूसरी तरफ कौन थे?
गियाकोमो लियोपार्डी, उसी जमाने के, पर सोच बिल्कुल अलग। वो कमाल के कवि थे पर बहुत निराशावादी। जहां मानजोनी राष्ट्र और समाज की बात कर रहे थे, लियोपार्डी लिख रहे थे इंसान के अकेलेपन पर, जिंदगी के दुख पर, प्रकृति की उदासीनता पर।
उनकी कविताएं आज भी दिल को छूती हैं।
बिल्कुल। तो ये दो अलग अलग धाराएं थीं।
फिर 1861 में इटली एक देश बन गया, लेकिन अब चुनौती थी कि इस नए देश की कहानी कैसे लिखी जाए, जो राजनीतिक रूप से तो एक था पर भाषा, संस्कृति, आर्थिक स्थिति में बहुत बटा हुआ था। उत्तर और दक्षिण का फर्क बहुत था।
यहीं पर वेरिज्मो आंदोलन आता है, मतलब यथार्थवाद। फ्रांस के प्रकृतिवाद से प्रभावित था ये। जियोवानी वेर्गा जैसे लेखक थे।
उन्होंने क्या लिखा?
उन्होंने सिसिली के गरीब किसानों, मछुआरों की कठोर जिंदगी को जैसा था वैसा दिखाया, बिना किसी आदर्शवाद के, और अक्सर उनकी अपनी बोली में लिखा। ये क्षेत्रीय सच को सामने लाने की एक कोशिश थी।
और फिर 20वीं सदी?
20वीं सदी में आते आते वो अनिश्चितता, पहचान का संकट और गहरा गया। ये पूरे यूरोप में हो रहा था वैसे, आधुनिकतावाद का दौर था। यहाँ नाटक में लुइजी पिरांडेलो बहुत बड़े नाम है।
उनका वो नाटक 6 कैरेक्टर्स इन सर्च ऑफ एन ऑथर।
हाँ, कमाल का नाटक है। वो हमेशा इसी चीज से जूझते रहे कि जिंदगी की असलियत क्या है जो बदलती रहती है, और समाज हमें जो मुखौटे पहनाता है वो क्या है, सच और भ्रम के बीच की महीन रेखा।
और उपन्यास में इतालो स्वेवो, उनका ज़ीनोस कॉन्शंस, वो भी मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद का बड़ा उदाहरण है।
बिल्कुल। और यूजीनियो मोंटाले की कविताएं बहुत गहरी, बौद्धिक, थोड़ी मुश्किल पर बेहद ताकतवर। उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला।
फिर फासीवाद का दौर आया होगा।
हाँ, वो लेखकों के लिए मुश्किल दौर था। कुछ ने समर्थन किया, कुछ चुप रहे, कुछ देश छोड़कर चले गए।
और युद्ध के बाद?
युद्ध के फौरन बाद नियो रियलिज्म आया, फिल्मों में भी और साहित्य में भी। युद्ध की सच्चाई, गरीबी, संघर्ष, इनको सीधे साधे ढंग से दिखाना। लेकिन जल्द ही लेखक इससे आगे बढ़े।
जैसे इतालो कैल्विनो?
हाँ, इतालो कैल्विनो एक बड़ा नाम है इस बदलाव के। उन्होंने शुरू में नियो रियलिस्ट कहानियां लिखीं, लेकिन बाद में वो कल्पना, प्रयोग और भाषा के खेल की तरफ मुड़ गए। उनकी किताबें जैसे इनविजिबल सिटीज या इफ ऑन अ विंटर्स नाइट अ ट्रैवलर, ये कहानी कहने के तरीकों पर ही सवाल उठाती हैं।
और भी बड़े नाम हैं, पियर पाओलो पासोलिनी, अम्बर्टो इको।
हाँ, अम्बर्टो इको की द नेम ऑफ द रोज तो बहुत मशहूर हुई। प्रीमो लेवी ने हॉलोकॉस्ट पर जो लिखा वो हिला देता है। और आजकल एलेना फेरांटे का नाम बहुत चर्चा में है।
तो ये सफर आज भी जारी है।
वाह, हमने तो सदियां पार कर ली कुछ ही मिनटों में। हाँ, रफ्तार तो तेज थी, पर इस पूरे सफर में कुछ बातें हैं जो बार बार सामने आती हैं, कुछ मुख्य धागे हैं, उन्हें पकड़ने की कोशिश करें।
हाँ जरूर। सबसे पहली चीज जो मुझे बहुत अनोखी लगी वो है क्वेश्चन दे ला लिंगुआ, भाषा का सवाल। ये सिर्फ ग्रामर या कौन सी बोली सही है इसकी बहस नहीं थी।
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये पहचान की लड़ाई थी। कौन सी इतालवी भाषा, दांते वाली टस्कन या रोम वाली या सिसली वाली, ये सदियों तक चला और इससे तय होता था कि किसकी कहानी सुनी जाएगी, किसकी आवाज को अहमियत मिलेगी, कौन असली इतालवी माना जाएगा।
ये तो बहुत गहरा मुद्दा है। भारत में भी हम भाषा को लेकर कितनी बहसें देखते हैं, ये कुछ कुछ वैसा ही है, पर शायद वहां ये राष्ट्रीय पहचान से और भी ज्यादा जुड़ा था।
बिल्कुल। दूसरा बड़ा धागा है अतीत के साथ लगातार संवाद। वो जो रोमन साम्राज्य का दौर था और फिर दांते, बित्राक, बुकाचो का, वो इतना महान था कि वो हमेशा एक कसौटी बना रहा।
मतलब हर नया लेखक खुद को उनके सामने तौल रहा था।
हाँ, ये विरासत एक ताकत भी थी, प्रेरणा भी थी, लेकिन एक बोझ भी थी कि क्या हम उनके जैसा लिख पाएंगे या उनसे अलग कैसे लिखें। ये दिखाता है कि अपनी परंपरा से जुड़ना और साथ ही नया करना कितना मुश्किल हो सकता है।
और तीसरा पॉइंट, साहित्य और राजनीति का रिश्ता। जैसा हमने पहले कहा, जब इटली देश नहीं था तब साहित्य ने उसकी कल्पना की, दांते से लेकर मांजोनी तक।
और देश बनने के बाद साहित्य ने उसकी मुश्किलों, उसके विरोधाभासों को दिखाया। और हेन्सवर्थ की वो बात मत भूलिए कि राजनीतिक बिखराव ने शायद साहित्य को और बेहतर बनाया।
हाँ, वो वाकई सोचने वाली बात है। और चौथा पॉइंट, लेखक या बुद्धिजीवी की भूमिका।
हाँ, वो भी बदलती रही। कभी लेखक दरबारी था, राजा की तारीफ में लिखता था, कभी वो अकेला दार्शनिक था जैसे लियोपार्डी, कभी वो समाज की आवाज बना जैसे मांजोनी या बाद में पासोलिनी। इतालवी परंपरा में ना कला को सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं देखा गया, उसकी एक सामाजिक भूमिका भी मानी गई।
क्या हेन्सवर्थ के विश्लेषण से कुछ ऐसी बातें हैं जो दिमाग में अटक जाती हैं, कुछ यादगार विचार?
हाँ है, सीधे कोटेशन तो नहीं पर उनके तर्कों का निचोड़ कह सकते हैं।
जैसे,
पहला, इतालवी साहित्य जब पैदा हुआ तो उसके मुंह में चांदी का चम्मच भी था और पैरों में सीसे की बेड़ियां भी। चांदी का चम्मच मतलब शानदार क्लासिकल विरासत, और बेड़ियां मतलब उसी विरासत का भारी बोझ जो हर नई चीज को दबा सकता था।
वाह, ये तो बहुत अच्छी तरह कहा गया है, विरासत ताकत भी, बोझ भी।
दूसरा, इटली एक राजनीतिक देश बनने से बहुत पहले कवियों और लेखकों की भाषा में बन चुका था। ये साहित्य की राष्ट्र निर्माण वाली भूमिका दिखाता है।
तीसरा,
इटली में भाषा का सवाल सिर्फ ग्रामर की टेक्निकल बहस नहीं थी, ये राष्ट्र की आत्मा की लड़ाई थी कि किसकी कहानियां कही जाएंगी, किसकी आवाज सुनी जाएगी। ये भाषा के पीछे की राजनीति और ताकत को दिखाता है।
सही। चौथा,
शास्त्रीय विरासत को अपनी देसी नवीनता के साथ मिलाना, ये इतालवी साहित्य की बड़ी ताकत रही है, परंपरा और नएपन का संगम।
और पांचवा, वो विरोधाभास वाला विचार।
हाँ, राजनीतिक बिखराव ने शायद साहित्य को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उन अलग अलग सांस्कृतिक माहौल को बनाया जिन्होंने पूरी परंपरा को और अमीर किया।
ये सब सुनने में तो बहुत ज्ञानवर्धक है, लेकिन क्या हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में आज के समय में इनका कोई मतलब है? हम इनसे क्या सीख सकते हैं?
अरे बिल्कुल मतलब है। सबसे पहले तो अगर हमें आज के इटली को, या सच कहूं तो किसी भी संस्कृति को बेहतर समझना है, तो उसकी कहानियों को, उसके साहित्य को जानना जरूरी है। इससे हमें वहां के लोगों, उनके सोचने का तरीका, उनके समाज को समझने में मदद मिलती है।
हाँ, ये तो है। और वो भाषा और पहचान वाला रिश्ता भारत जैसे देश के लिए तो ये बहुत ही प्रासंगिक है, जहां इतनी भाषाएं, इतनी बोलियां हैं। यह हमें याद दिलाता है कि भाषा सिर्फ बात करने का साधन नहीं है, वो हमारी पहचान का, हमारे इतिहास का और हाँ, शक्ति का भी प्रतीक है।
बिल्कुल। और फिर वो बात विरासत को कैसे संभालें और नयापन कैसे लाएं, ये सवाल तो हर फील्ड में उठता है, चाहे आप बिजनेस में हो, कला में हो या कुछ भी कर रहे हो। इटली के लेखकों का ये संघर्ष हमें सिखाता है कि अपनी जड़ों से ताकत कैसे लें बिना उनके कैदी बने।
और कला और राजनीति का रिश्ता आजकल भी हम देखते हैं ना, कलाकार लेखक समाज पर टिप्पणी करते हैं, ये हमें याद दिलाता है कि उनकी एक भूमिका है समाज में, वो सिर्फ मनोरंजन नहीं करते।
और आखिर में ये सब जानने से ना एक तरह की सांस्कृतिक सहानुभूति, कल्चरल एम्पथी बढ़ती है। जब हम किसी और समाज की कहानियाँ, उनके आदर्श, उनके संघर्ष जानते हैं, तो हम उनके लोगों से ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं, उनके नज़रिए को थोड़ा बेहतर समझ पाते हैं।
तो इस पूरी चर्चा के बाद आपके लिए सबसे अहम बात या सबसे चौंकाने वाली चीज़ क्या रही?
मेरे लिए तो शायद वही विरोधाभास सबसे दिलचस्प रहा कि राजनीतिक बिखराव ने साहित्यिक समृद्धि को कैसे बढ़ावा दिया। ये आम तौर पे हम सोचते नहीं हैं। और दूसरा वो भाषा का सवाल कि एक सही भाषा को लेकर बहस कितनी गहरी और कितनी लंबी खिंच सकती है और उसके कितने मायने हो सकते हैं।
हाँ, ये वाकई हैरान करने वाला है। और मेरे लिए शायद ये बात कि साहित्य कैसे राजनीति से भी पहले एक राष्ट्र की कल्पना को गढ़ सकता है और ये कि अतीत कैसे मरा नहीं होता, वो साहित्य के जरिए लगातार हमसे बात करता रहता है, हमें चुनौती देता रहता है। पीटर हेंसफर्थ यही दिखाते हैं कि इतालवी साहित्य कोई म्यूजियम में रखी चीज़ नहीं है, ये एक जिंदा बातचीत है।
और ये बातचीत हमें सिखाती है कि अपनी जड़ों से जुड़ना कितना ज़रूरी है, पर उतना ही ज़रूरी है कुछ नया बनाना, अपनी आवाज़ ढूंढना। और हाँ, हम अपनी कहानी किस भाषा में कहते हैं, ये चुनाव बहुत मायने रखता है। ये सिर्फ इटली की कहानी नहीं है, इसमें हर संस्कृति के लिए कोई ना कोई सबक छुपा है।
बिल्कुल। और शायद सबसे बड़ा सबक यही है कि कहानियाँ और भाषाएं सिर्फ शब्द नहीं हैं, वो हमें बनाती हैं, हमें जोड़ती हैं और कभी कभी हमें बांटती भी हैं। उन पर ध्यान देना, उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।